आप सुन रहे हैं अरपा रेडियो। बस्तर दशहरे के अवसर पर जिला प्रशासन जगदलपुर द्वारा इस वर्ष सजीव प्रसारण का आयोजन किया गया। प्राचीन परंपराओं के अनुसार इस वर्ष भी बस्तर दशहरे की हर रस्म का निर्वहन किया गया, लेकिन एहतियात के साथ। वर्तमान महाराज ने स्वयं निशा यात्रा की रस्म का निर्वहन किया। इस पर्व की ऑडियो रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत है अरपा रेडियो पर। अरपा रेडियो के लिए ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं विनोद कुशवाहा।
अरपा रेडियो सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को विनोद कुशवाहा का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आज विजयादशमी है और कई जगहों पर, हालांकि रविवार को ही विजयादशमी पर्व मनाया जा चुका है, और कई जगहों पर तिथियों के भ्रंश को लेकर के आज भी कुछ जगहों पर दशहरा मनाया जा रहा है। वैसे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें और देश की बात करें, तो विश्व प्रसिद्ध जब बस्तर दशहरे की बात आती है तो लोगों की ज़ुबान पर बस्तर दशहरा खास होता है, और वो इसलिए भी कि चूँकि देश दुनिया में अगर सबसे लंबी अवधि का कोई त्यौहार अगर मनाया जाता है तो वो है बस्तर दशहरा। लगभग 75 दिनों तक 2 दर्जन से भी ज़्यादा पूजा विधान इस बस्तर दशहरे में संपन्न होते हैं। अगर अब तक की हम बात करें तो 1 दर्जन के आसपास जो पूजा विधान है बस्तर दशहरे के, वो संपन्न हो चुके हैं। बीते रविवार को ही निशा यात्रा पूजा जो है, ये तांत्रिक पूजा कहलाती है, इसे संपन्न किया गया, और देर शाम को मावली परघाव यानी 100 देवी देवता इस बस्तर दशहरे में शामिल होने के लिए आते हैं, उनका परघाव किया गया यानी उनका स्वागत किया गया। बस्तर की ज़ुबान में आमतौर पर परघाव करना यानी स्वागत करना कहलाता है। हम बस्तर दशहरे की बात कर रहे हैं तो चूंकि इस बार एक महीना मलमास का भी बड़ा था, और यही वजह है कि लगभग 105 दिनों का दशहरा इस बार बस्तर में मनाया जा रहा है। चूंकि बस्तर दशहरे में परंपरा है यहाँ पर कि आदि शक्ति की 9 दिनों तक आराधना होती है, यहाँ पर रावण दहन नहीं होता। ये सबसे बड़ा अजूबा यूँ कह लें या यूँ कह लें कि अलग है दुनिया में अपनी तरह का बस्तर दशहरा। तो हम बात कर रहे हैं बस्तर दशहरे की, और आपको ये भी बताते चलें कि बस्तर दशहरा सावन मास की अमावस्या से शुरू होता है। हरेली जब अमावस्या आती है उस दिन इसका पहला विधान शुरू होता है। ठोरलू खोटला की जो लकड़ी होती है जो कि जंगल से लाई जाती है, और आप जानते होंगे, जिन लोगों ने सुन रखा होगा कि बस्तर दशहरे की सबसे जो प्रमुख बातें हैं वो है बस्तर दशहरे में रथ परिक्रमा। लकड़ी का एक विशालकाय 2 मंजिला रथ होता है और ये परिक्रमा करता है। तो थोड़ी सी हम बस्तर दशहरे की बात कर लें, और फिर उसके बाद जो बीते रविवार को निशा यात्रा की पूजा विधान हुई थी, मावली परघाव रस्म हुई थी, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन चूंकि आप बस्तर दशहरे के बारे में बहुत सारे लोग जानते हुए होंगे और बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन बहुत सारी रस्मों के बारे में अनजान होंगे। तो जैसा मैंने कहा कि बस्तर दशहरा अमावस्या को यानी हरेली अमावस्या को शुरू होता है, और उसके बाद ये पूर्णिमा के बाद जब अभी कार्तिक मास शुरू होगा उसके बाद ये दशहरा पर्व सम्पन्न होगा। लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा रस्में जो हैं इस पर्व में होती हैं, और बस्तर दशहरे की जो शुरुआत होती है ठोरला खोटलू एक लकड़ी होती है जिसे बस्तरिया ज़ुबान में कहा जाता है। इसे एक लकड़ी को लाया जाता है दंतेश्वरी मंदिर के सामने, इसकी पूजा अर्चना की जाती है, और फिर उसके बाद शुरू होती है रथ निर्माण की प्रक्रिया। करीब 150 के आसपास जो कारीगर हैं वो पारंपरिक रीति रिवाज और औचारों के ज़रिए जो रीति रिवाज की जो परंपराएं शामिल हैं ख़ासतौर पर बस्तर दशहरे के रथ को बनाने के लिए, उसे बनाते हैं। और सबसे बड़ी अचरज की बात यह है कि आज के आध्यात्मिक युग में बहुत सारी मशीनों का इस्तेमाल होता है तरह तरह की चीज़ों बनाने के लिए, लेकिन बस्तर दशहरे की खासियत यह है कि जो रथ निर्माण होता है इसमें किसी तरह के अत्याधुनिक औजारों का उपयोग नहीं होता। जो कारीगर हैं उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को निभाती आ रही हैं और वो इस रथ का निर्माण करते हैं, और उसमें मुख्य तौर पर जो उनके पारंपरिक औजार होते हैं उसमें छेली, दसूला और हथौड़ी, इन हथियारों के ज़रिए जो है वो औजारों के ज़रिए वो रथ का निर्माण करते हैं। तो जब आप रथ को अगर देखें, कभी मौका लगे तो बस्तर दशहरा देखने ज़रूर जाएँ, और उस रथ की विशालकाय नक्काशी को, उसकी बनावट को आप देखेंगे तो अचरज में डूब जाएंगे और फिर कह उठेंगे कि दुनिया का ये भी एक अजूबा आश्चर्य है, क्योंकि दो मंजिला उतना विशाल काय रथ केवल तीन औजारों से तैयार करना शायद संभव नहीं है, लेकिन बस्तर के उन कारीगरों के लिए संभव है जो रियासत काल से परंपराओं के तहत इस रथ का निर्माण करते चले आ रहे हैं। इस रथ से जुड़ी हुई एक और खास बात है, रियासत काल के समय से ऐसा कहा जाता है कि महाराजा पुरुषोत्तम देव दंडवत करते हुए पुरी तक की यात्रा करते हुए वहां पर पहुंचे थे। उस दौरान वहां के राजा को भगवान श्री कृष्ण ने स्वप्न में कहा था कि वहां से बस्तर से राजा पुरुषोत्तम देव आ रहे हैं, उनका सम्मान करें और उन्हें गजपति की उपाधि से सम्मानित करें। उस दौरान महाराजा पुरुषोत्तम देव को गजपति की उपाधि से सम्मानित करते हुए 16 चक्रों का रथ जो है वो भेंट किया गया था। महाराजा पुरुषोत्तम देव लाव लश्कर के साथ उस विदाई के रथ को लेकर के बस्तर पहुंचे, पर चूंकि इतने बड़े रथ को बस्तर के उस भौगोलिक परिवेश के समय में चलाना बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्होंने इसके कई हिस्से बांट दिए। मसलन कि 8 चक्के का रथ जो है वो विजय रथ के रूप में बस्तर दशहरे को दिया, तो वहीं 4 चक्के का रथ जो वो फूल रथ के रूप में बस्तर रथ की परिक्रमा करता है, और जो बाकी के जो 6 चक्के बचते हैं उसमें से जो यहाँ पर सबसे बड़ा पर्व होता है जगन्नाथ स्वामी के समय जो यात्रा निकाली जाती है गुंचा पर्व जिसे कहा जाता है, और ये छत्तीसगढ़ में यही एक जगह है जहाँ पर कि 3 रथ उस समय चलते हैं, जैसा कि पूरी में परंपरा है कि 3 रथ का भ्रमण होता है, ठीक वैसा ही कुछ जो है यहाँ पर भी वो नज़ारा देखने को मिलता है। तो जैसे मैंने कहा कि बस्तर के रीति रिवाज, यहाँ की परंपराएँ, यहाँ की धार्मिक आस्था बहुत ही वैभवशाली और समृद्धशाली है। जब कभी भी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर एक बार देखें। और अब हम बात कर रहे हैं बस्तर दशहरे की, और हमने बात की थी दिशा यात्रा की। ये तांत्रिक पूजा होती है। थोड़ा सा तांत्रिक शब्द सुनने के बाद आप थोड़ा सा आश्चर्य में होंगे कि आज के इस जमाने में तांत्रिक और वो भी अंधविश्वास जैसी बातें। देखिए अंधविश्वास नहीं है, ये रीति रिवाज उस समय से चला आ रहा है, क्योंकि बस्तर में जो कुछ भी परंपराएं हैं वो रियासत काल के समय से चल रही हैं और ठीक उसी स्वरूप, उसी वैभव, उसी संपन्नता के साथ आज भी निभाई जाती हैं। तो बस्तर दशहरे की खास रस्म जो है वो यही कि तांत्रिक पूजा। जब अष्टमी का पूजन होता है नवरात्रि के दिन, तो ये रात को मध्य रात्रि को करीब 12 से 4 बजे के बीच इस परंपरा को, इस पूजा विधान को संपन्न किया जाता है। और इसमें होता यह है कि जो महाराजा होते थे उस समय, अभी तो रियासत काल के परिवार के लोग सदस्य हैं, रियासत काल के समय के जो परिवार के लोग हैं उनकी जो पीढ़ियाँ हैं उनके कुछ लोग सदस्य हैं, उसमें रियासत काल की अगर बात करें अभी भंजदेव परिवार से, तो कमलचंद भंजदेव जो हैं वो अष्टमी की महारात्रि को लाव लश्कर के साथ दंतेश्वरी मंदिर से निकलते हैं।
दिशा यात्रा का जो महत्व यह है कि जो कार्यक्रम हम माई दंतेश्वरी की आज पूजा अर्चना करके और साथ में हवन कंप्लीट करके हम माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेते हुए ये तंत्र विद्या की पूजा है, जिसे कि रात के अर्धरात्रि के बाद किया जाता है, 12 बजे के बाद इसकी पूजा परंपरा होती है, जिसमें कि बलि की प्रथा चलती आई है सदियों से, और आज भी आदिवासी भाइयों के साथ आस्था के स्वरूप में हम माता को बलि का प्रसाद चढ़ाते हैं, और ये तंत्र विद्या की पूजा लगातार 700 सालों से चली आ रही है। इस पूजा अर्चना के बाद आज ही के दिन मौली माता का डोली दंतेवाड़ा से जगदलपुर पहुंचता है और कल मौली प्रगाह होगा, और इसका बहुत बड़ा महत्व बस्तर दशहरा इसलिए है, पूरे दिन हम लोग माई दंतेश्वरी के पूजा अर्चना में लगे रहते हैं। आज ही का दिन होता है जिसमें उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है। आज रात भर बलि की परंपरा चलती आएगी और ये 700 सालों से चली आ रही है, और साथ साथ मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ अष्टमी के इस अवसर पर, और साथ साथ हम माई जी से ये प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हम COVID-19 के इस महामारी से हम निजात पाएँ, हमारा देश नहीं पूरा विश्व निजात पाए। धन्यवाद।
उस दौरान जो दशहरा कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, वर्तमान में अभी अध्यक्ष हैं सांसद दीपक बैज, वो उनके साथ थे। जिला प्रशासन के तौर पर अगर बात करें, चूंकि ये जो बस्तर दशहरा है वो टेंपल कमेटी, बस्तर दशहरा समिति उनकी अगुवाई में होता है। तो सरकारी तौर पर अगर बात करें तो दशहरा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो बस्तर सांसद दीपक बैज हैं, और अगर टेंपल कमेटी की बात करें तो उसके अध्यक्ष के तौर पर, मुखिया के तौर पर कलेक्टर रजत बंसल, ये ऐसे तमाम लोग जो हैं इसमें शामिल होते हैं निशा यात्रा पूजा विधान में।
लगातार 16 तारीख से जो बस्तर ऐतिहासिक दशहरा पर्व का रस्में लगातार आयोजित की जा रही है, और आज इसी महत्वपूर्ण रस्मों में से निशा यात्रा का कार्यक्रम है, अभी कुछ ही समय के बाद संपन्न होगा। लेकिन इसके बाद कल मौली परगाव, फिर भीतर रैनी, बाहर रैनी, ये तीन कार्यक्रम बस्तर दशहरा कमेटी, जिला प्रशासन, सभी लोगों के लिए चुनौती है ये COVID-19 के समय में। लेकिन माँ दंतेश्वरी के आशीर्वाद से, हमारी बस्तर की जनता के सहयोग से, आप सभी मीडिया के सहयोग से, सभी जनमानस के सहयोग से अभी तक का ये दशहरा पर्व बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो तीन दिन भी ये बहुत अच्छे से संपन्न होगा, जनमानस भी इस विषम परिस्थिति में आगे कार्यक्रमों के लिए पूरे संपन्न कराने में सहयोग और मदद और आशीर्वाद रूप में मदद करेंगे।
गाजे बाजे के साथ आतिशबाजी के धमाके के बीच में रात को 12 बजे जगदलपुर शहर का जो मावली मंदिर कहलाता है, वहाँ से 12 गांवों के देवी देवताओं, उनके गणों के लिए पवित्रता से जो भोग तैयार किया जाता है, जिसमें कि इस भोग में चावल, खीर और उड़द की दाल और उड़द से बने हुए बड़े, ये मुख्य तौर पर आमतौर पर होता है तांत्रिक जब पूजा होती है तो उड़द के बड़े का उपयोग उसमें होता है। तो इन तमाम सामग्रियों को करीब 24 हंडियाँ होती हैं मिट्टी की, उनमें रखा जाता है, उनके मुंह को सफ़ेद कपड़े से बांध दिया जाता है, और एक कांवड़ यात्रा यानी उस हंडियों को कंधे पर लेकर के जो राउत जाति के लोग होते हैं वो उसे अपने कंधे में रखते हैं कांवड़ के रूप में, और फिर जुलूस के रूप में एक यात्रा निकलती है। और ये यात्रा जो है वो एक जगह बनी हुई है जगदलपुर में, जिसे कि मंदिर के रूप में जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब महाराजा उस समय हुआ करते थे रियासतकालीन के समय, उस समय साल में एक बार खम्बेश्वरी मंदिर कहलाता है, ये अनुपमा चौक है वहाँ पर ये मंदिर है, और साल में केवल एक बार ही इसके दरवाजे खुलते हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि जो महाअष्टमी के दिन निशा यात्रा की पूजा होती है उसके लिए, पूजा पाठ के लिए ये खम्बेश्वरी देवी का मंदिर जो है वो खोला जाता है। तो लाव लश्कर के साथ महाराजा कमलचंद भंसदेव वहाँ पर ये पूजा विधान लेकर पहुँचते हैं, और उसके बाद बाकायदा जो एक तांत्रिक पूजा के लिए जो अनुष्ठान होते हैं वो वहाँ पर संपन्न किए जाते हैं। और सबसे खास चीज़ ये है कि इस अनुष्ठान के दौरान, चूँकि ये तांत्रिक पूजा है, तो इस अनुष्ठान के दौरान करीब 11 बकरों की बलि दी जाती है, मछली और जो भूरा कुमड़ा होता है उसकी बलि दी जाती है, और फिर उसके बाद बस्तर और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की जाती है। और ये परंपरा अभी से नहीं चली आ रही है, जैसा कि ये जो बस्तर दशहरा, ये 611 सालों की पुरानी परंपरा है। उस समय से जो चीज़ें थीं रियासत काल के समय से, ठीक वैसी ही पूजा विधान के जरिए ये परंपरा आज भी उसी रूप में निभाई जाती हैं। इस परंपरा के बाद कल जो है वो मावली परघाव का रीति रिवाज संपन्न किया गया, और आज सोमवार है, दशहरा समाप्ति की ओर है। तो अब जो धीरे धीरे जो खास रस्में होती हैं बस्तर दशहरे की वो संपन्न होंगी। तो निशा यात्रा पूजा विधान में फिलहाल इतना ही। अब अपने दोस्त विनोद कुशवाहा को अनुमति दीजिए, हम एक बार फिर बहुत जल्दी बस्तर दशहरे से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी रोचक जानकारियों के साथ, मावली परघाव क्या होता है, किस तरह का पूजा विधान होता है, और फिर इसके बाद इसकी मुख्य रस्म होती है भीतर रैनी और बाहर रैनी, इन तमाम रस्मों के बारे में भी आगे आपको बताते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, फिलहाल अरपा रेडियो की तरफ से आप ये लगातार सुनते रहिए बस्तर दशहरे की ये विशेष और खास पेशकश।
बस्तर दशहरे के बारे में जानकारी और बस्तर दशहरे के दौरान होने वाली निशा यात्रा रस्म के बारे में जानकारी से भरी हुई ये ऑडियो रिपोर्ट अभी आपने सुनी जगदलपुर से हमारे साथी विनोद कुशवाहा के द्वारा। इसका प्रसारण किया गया अरपा रेडियो पर।
ये है अरपा रेडियो।